अर्पिता जी की गुस्सी भरी घूरती निगाहें अब भी शान पर गड़ी हुई थीं। शान असमझ सा उन्हें देखते हुए बोला, आप कहना क्या चाहती हैं बड़ी माँ? मैं कुछ समझा नहीं, आप इतना गुस्सा क्यों हैं? अर्पिता जी ने अब भी उसको घूरते हुए कहा, हम क्या कहना चाहते हैं और क्यों आप पर इतना नाराज हो रहे हैं, ये तो हम बाद में आराम से आपको बताएंगे, पहले आप हमारी सवाल का जवाब दीजिए। शान ने भौं उचकाते हुए पूछा, कैसा सवाल बड़ी माँ? आरवी कहाँ है? अर्पिता जी ने बिना बात को घुमाई सीधे से सवाल किया, पर उनका सवाल सुनकर शान चौंक उठा। आरवी कहाँ है का क्या मतलब? घर पर ही होगी और कहाँ जाएगी? घर पर नहीं है, रात को आपका इंतजार कर रही थी, पर सुबह से उनका कोई पता नहीं। हमें लगा था कि शायद देर रात सोने की वजह से उठने में देर हो गई होगी, पर नहीं, वो तो यहाँ भी नहीं है। हम उन्हें सारे घर में ढूंढ चुके हैं, पर वो कहीं भी नहीं है। रात का जिक्र होते ही शान को कल शाम से रात तक की सभी बातें एक एक करके याद आने लगी और उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। अर्पिता जी बड़े गौर से उसे देख रही थी। शान को कल रात की धुंधली तस्वीरें नजर आने लगी। धीरे धीरे करके आरवी से हुई बहस भी उसको याद आने लगी, पर अब उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने अर्पिता जी को देखा और भावहीन सा बोला, अगर वो घर में कहीं नजर नहीं आ रही तो आप मुझसे सवाल जवाब करने क्यों आई हैं? उसकी जिंदगी है, उसकी मर्जी, जब चाहे जहां मर्जी जा सकती है। अगर आपको उसकी इतनी ही परवाह है तो फोन करके उससे सवाल कीजिए कि सुबह सुबह कहां गायब है। मुझसे सवाल करने का क्या मतलब हुआ? उसकी आवाज़ में चिढ़ और गुस्सा झलक रहा था, जिसे अर्पिता जी ने भी बखूबी महसूस किया। इसके साथ ही उनके भाव सख्त हो गए और उन्होंने गुस्से में कहा, वो आपकी पत्नी है तो वो कब कहाँ गई, इस बात का पता आपको होना चाहिए। हम आपसे ही सवाल करेंगे क्योंकि आरवी आपकी जिम्मेदारी है। वैसे भी कल रात वो आपका इंतजार कर रही थी और आपको देखकर लगता है कि आप नशे में धुत हालत में घर लौटे थे, और हमें संदेह है कि नशे में आपने ज़रूर उनके साथ गलत व्यवहार किया है, तभी वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। घर में कहीं नहीं है वो, मतलब वो घर से बाहर है, और सुबह सुबह किसी को बिना कुछ बताए वो कभी यूं घर से बाहर नहीं गई है। पर अगर आज उन्होंने ऐसा किया है तो ज़रूर उसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी, और हमें शक है कि उनके इस कदम के उठाने के पीछे आप ही हैं। आरवी घर पर नहीं है, ये सुनकर शान कुछ चौंका। उसको कल रात अपनी कही बातें याद आने लगी। उसके बाद उसके जहन में आरवी की कही बातें घूमने लगी कि वो चली जाएगी, नहीं दिखाएगी उसको अपना चेहरा। ये याद आते ही उसकी भौहें तन गई। आरवी घर पर कहीं नहीं है, इसका मतलब वो घर छोड़कर चली गई है। ये समझ आते ही उसका चेहरा एक बार फिर गुस्से से जल उठा और उसने नफरत से कहा, आप बेवजह मुझ पर शक कर रही हैं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। मैंने उसको घर से जाने नहीं कहा, अगर वो कहीं गई भी है तो अपनी मर्जी से गई है, मैंने उसको मजबूर नहीं किया है, इसलिए आपको मुझ पर शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको उसके बारे में सोचकर परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे अपनी मर्जी से गई है वैसे ही अगर आना होगा तो आ भी जाएगी, और अगर नहीं भी आई तब भी मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अर्पिता जी ने शक भरी निगाहों से उसको घूरा तो शान ने खींचते हुए कहा, आप मुझ पर शक कर रही हैं, पर मुझे नहीं पता कि वो कहाँ और क्यों गई है, और मुझे पता करना भी नहीं है। अगर आपकी बात सच है और वो घर छोड़कर चली गई है तो अच्छा है, वैसे भी मैं अब उसे एक मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। शान का गुस्सा, उसकी नफरत उसकी बातों में उतर आया था। ये तो सभी ने देखा था कि दोनों का रिश्ता सुधर रहा था। शान उसकी परवाह करने लगा था और शायद उसके दिल में आरवी के प्यार के अंकुर भी फूटने लगे थे, पर अचानक ही शान का रवैया आरवी के प्रति इतना सख्त हो गया जैसे शादी के शुरुआती दिनों में हुआ करता था। ये देखकर अर्पिता जी हैरान थीं। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर एक रात में ऐसा क्या हो गया कि आरवी घर से गायब है और शान को उससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा। वो शान के गुस्से से लाल चेहरे को देखते हुए यही सोच रही थी, तभी उनके दिमाग में अचानक से ख्याल आया कि कल शान ड्रिंक करके आया था, हो सकता है कि उसके और आरवी के बीच इसी बात को लेकर बहस हो गई हो। शान तो है ही गुस्से का तेज, जरूर उसने गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया होगा जिससे आरवी के स्वाभिमान को ठेस पहुंची हो, क्योंकि आरवी किसी छोटी बात पर तो इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगी। वो एक स्वाभिमानी लड़की है और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। अर्पिता जी ने अपने ही हिसाब से एक कहानी गढ़ ली, और कर भी क्या सकती थी, शान कुछ बताता नहीं और आरवी यहाँ है ही नहीं। फिलहाल उनके लिए आरवी को ढूंढकर वापस लाना सबसे ज्यादा जरूरी था। उन्होंने शान के बेपरवाह वाले रवैये को देखा तो कड़क आवाज में बोली, आपको भले फर्क ना पड़ता हो पर हमें फर्क पड़ता है। आपकी पत्नी सुबह से या शायद रात से कहाँ है, इस बात से आपको भले ही कोई मतलब ना हो, पर हमारी बहू इस वक्त कहाँ और किस हालत में है ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। आपको भले ही उनके घर पर होने या ना होने से कोई फर्क ना पड़ता हो, पर हमें पड़ता है और हमें हमारी बहू वापस हमारे घर में चाहिए। आरवी ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत कभी नहीं कर सकती, मतलब साफ है कि जरूर आपने ही ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, इसलिए अब आप ही उन्हें ढूंढकर वापस लेकर आएंगे। आप ये कैसे करेंगे हम नहीं जानते, हम बस इतना जानते हैं कि आपकी वजह से हमारी बहू जाने कहाँ भटक रही होंगी और अब आपको ही उन्हें वापस लाना होगा। कहीं भी जाइए, कुछ भी कीजिए, हमें बस हमारी बहू वापस हमारे घर में चाहिए।
अर्पिता जी ने उसको अपना फैसला सुना दिया। वो इस वक्त काफी गंभीर थी और गुस्से में भी लग रही थी। शान पहले ही आरवी से खार खाए बैठा था, अब तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसने भी अपनी जिद पर अड़ते हुए सख्त लहजे में कहा, आपने अपना फैसला सुना दिया तो अब मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं उसे ढूंढने कहीं नहीं जाने वाला। कोई छोटी बच्ची नहीं है वो, जो कहीं खो जाएगी तो मुझे उसको ढूंढने जाना पड़े। जब अपनी मर्जी से घर से जा सकती है तो वापसी का रास्ता भी जानती ही होगी। अगर आना होगा तो खुद आ जाएगी, और अगर नहीं आना होगा तो ना आए, पर मैं उसको लेने नहीं जाने वाला, किसी भी हाल में नहीं। कहीं ना कहीं शान उसके यूं घर छोड़कर जाने के फैसले से नाराज था, और गुस्सा तो पहले से बहुत था, तो भला वो कैसे अर्पिता जी की बात मानता। उसने साफ इनकार कर दिया। उसकी बातें सुनकर अर्पिता जी को अब गुस्सा आ गया। शान ने अपनी बात कही और तुरंत ही बाथरूम की तरफ बढ़ गया। पर अभी वो कुछ ही कदम आगे बढ़ा ही था कि उसके कानों में अर्पिता जी की गुस्से भरी आवाज पड़ी, अपना फैसला सुनाकर जा रहे हैं तो जाते जाते हमारा निर्णय भी सुन लीजिए। शान के आगे बढ़ते कदम रुक गए। अर्पिता जी की तरफ मुड़ते हुए उसने सवालिया निगाहों से उन्हें देखा तो उन्होंने गंभीरता से आगे कहना शुरू किया, अगर हमारी बहू अगले एक घंटे में वापस घर नहीं आई तो हम भी ये घर छोड़कर चले जाएंगे। अर्पिता जी अपना फैसला सुना चुकी थी और उनका फैसला सुनकर शान के होश उड़ चुके थे। उसने आंखें बड़ी बड़ी करके उन्हें देखते हुए हैरानी से कहा, बड़ी माँ, आप उस लड़की के लिए अपना घर छोड़ने को तैयार हैं? शान आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही अर्पिता जी ने गुस्से में उसकी बात काटते हुए कहा, वो कोई आम लड़की नहीं है शान, आपकी पत्नी और इस घर की बहू है, तो अपनी मर्यादा मत भूलिए। रही बात उनकी वजह से घर से जाने के फैसले की, तो वो अडिग है, आप कुछ भी करके उसे बदल नहीं सकते।
आरवी को इस घर में हम अपनी जिम्मेदारी पर लाए थे, और जब इस घर में उनके लिए जगह नहीं तो हम भी यहाँ नहीं रह सकते। अगर आप अगले एक घंटे के अंदर हमारी बहू को वापस लेकर नहीं आए तो हम भी ये घर छोड़कर चले जाएंगे, और आप उसके बाद कितनी ही कोशिशें क्यों ना कर लें पर हम वापस नहीं आएंगे। ये हमारा आखिरी फैसला है जिसे आप क्या कोई नहीं बदल सकता। एक घंटा है आपके पास, या तो हमारी बहू जहाँ भी हैं उन्हें ढूंढकर वापस घर ले आइए, वरना अपनी इज्जत का अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइएगा। अर्पिता जी ने फरमान सुनाया और गुस्से में वहां से चली गईं। शान अवाक सा उन्हें देखता ही रह गया। अर्पिता जी की कही बात याद करते ही उसका गुस्सा उसके सर पर चढ़ चुका था। उसने गुस्से में दीवार पर एक पंच मारा और अपना फोन उठाकर सीधे कमरे से बाहर निकल गया। अर्पिता जी हॉल में ही थी जब उन्होंने शान को बाहर की तरफ जाते हुए देखा, और इसके साथ ही उनके लबों पर रहस्यमयी शातिर मुस्कान तैर गई। उन्होंने जानबूझकर ही ये सब कही थी क्योंकि वो जानती थी कि शान उनके बीच में आने पर आरवी को ढूंढने की जाएगा और उसे वापस भी लेकर आएगा, और यही तो चाहती थी वो। शान बेहद गुस्से में था और फोन पर किसी से बात कर रहा था। बाहर बैठे सुयश जी और सुभाष जी ने उसकी कैसे कपड़ों में देखा तो अचंभित से उसे देखने लगे। अंशु ने उसको देखा तो तुरंत ही डैडी डैडी कहकर उसकी तरफ दौड़ पड़ी। शान जो फोन पर अपने असिस्टेंट कार्तिक से बात कर रहा था, अंशु की आवाज सुनकर उसने कुछ कहा और फोन काट दिया। अंशु को थोड़ा लाट करने के बाद वो जल्दी वापस आने का कहकर अपनी कार लेकर तेजी से वहां से निकल गया। सुयश जी और सुभाष जी को कुछ पूछने का मौका ही नहीं मिला। दोनों ने सवालिया निगाहों से एक दूसरे को देखा और एक साथ ही कंधे उचका दिए और अंशु के साथ लग गए। शान गुस्से में कार ड्राइव करते हुए गेट पर पहुंचा, फिर अपने साइड का मिरर नीचे करके जैसे ही गार्ड को देखा, गार्ड की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। वो एकदम अलर्ट होकर खड़ा हो गया। अगले ही पल शान की गंभीर आवाज उनके कानों में पड़ी। आ कहते कहते अचानक शान चुप हो गया। गार्ड असमंजस भरी निगाहों से उसको देखते हुए, जी साहब। शान ने अब अपने जबड़े पीछे और खुद को संयमित करते हुए आराम से बोला, अपनी मैडम को यहाँ से बाहर जाते देखा है? गार्ड ने उसका सवाल सुना तो तुरंत ही जवाब दिया, जी साहब, आज सुबह के करीब 2 बजे मैडम यहाँ से गई थी। हमने बहुत रोकने की कोशिश की पर वो मानी ही नहीं। उन्हें अकेले जाते देख हम कुछ दूर उनके पीछे भी गए, पर अचानक ही वो हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई, तो हम वापस लौट आए। उसकी बात सुनकर शान की आंखें गुस्से से छोटी छोटी हो गईं। उसने गार्ड को घूरते हुए कहा, तुमने आधी रात को दरवाजा खोला ही क्यों? और जब उसे जाते देखा तो ध्यान देना चाहिए था ना कि कहां गई है, कम से कम किसी को बता ही दिया होता। शान के गुस्सा करने से वो बेचारा गार्ड डर गया। उसने सहमते हुए धीमी आवाज में कहा, साहब हम नहीं खोल रहे थे तो मैडम गुस्सा करने लगी थी, बहुत रो भी रही थी, तो हमें लगा कि कोई परेशानी होगी इसलिए हमने दरवाजा खोल दिया। हमने उनका पीछा भी किया था पर वो अचानक ही कहीं गायब हो गई। हमें लगा कि वो बताकर ही गई होंगी इसलिए हमने किसी को कुछ नहीं बताया। गार्ड ने तुरंत ही सफाई पेश की। आरवी रो रही थी ये सुनकर शान के भाव एक पल को बदले, पर अगले ही पल एक बार फिर चेहरा सख्त हो गया। उसने गार्ड को घूरते हुए कहा, हाँ
वो भूत प्रेत है ना, इसलिए तुम्हारी आंखों के सामने से गायब हो गई और तुम्हें पता नहीं चला। बेचारे गार्ड ने अपना सर झुका लिया पर बोला कुछ नहीं। शान कुछ पल गुस्से से उसको घूरता रहा, फिर अपनी मुट्ठियों को कसते हुए शांत लहजे में बोला, किस तरफ गई थी वो? उसका सवाल सुनते ही गार्ड ने इशारे से उसको दिशा बताई जो आरवी के घर के ऑपोजिट में थी। शान का दिमाग ठनक गया और उसने गाड़ी उस दिशा में भगा दी, साथ ही बाहर निगाहें घुमाते हुए आरवी को ढूंढने लगा और कार्तिक को भी कुछ इंस्ट्रक्शन देने लगा। 15 मिनट बीत गए उसको सड़कों की खाक छानते हुए, पर उसको आरवी का कुछ पता नहीं चला। एक जगह जाकर उसने गाड़ी रोकी और कार्तिक को फोन लगा दिया। अगले ही पल एक बाइक उसकी गाड़ी के पास आकर रुकी तो शान ने कॉल कट किया और गाड़ी से बाहर निकल गया। उस बाइक वाले ने हेलमेट हटाया और कार्तिक शान के सामने था। शान ने हमेशा वाले सख्त लहजे में कहा, जो काम कहा था हुआ? कार्तिक ने तुरंत ही हामी भरते हुए कहा, जी सर। शान ने उसको कुछ इशारा किया तो कार्तिक ने अपने पीठ पर टांगे बैग से अपना लैपटॉप निकाला और एक पेन ड्राइव उसमें लगाते हुए लैपटॉप को बाइक की सीट पर रख दिया और कीबोर्ड पर धड़ाधड़ उंगलियां चलाने लगा। कुछ ही सेकंड बाद मॉनिटर पर शान के विला के आसपास की रिकॉर्डिंग चलने लगी। शान ने उसको टाइम बताया तो कार्तिक ने उस टाइम की मल्होत्रा निवास के मेन गेट की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। दोनों की निगाहें अब स्क्रीन पर टिकी थी। बताए वक्त से कुछ देर बाद गेट से बाहर निकलती आरवी उन्हें नजर आई और दोनों अब आगे की फुटेज देखने लगे। शान ने अपने विला के 1 किलोमीटर की दूरी तक कैमरा लगाए हुए थे जो उसके ऑफिस के सिस्टम से कनेक्टेड थे और शान के फोन करने पर कार्तिक ऑफिस जाकर कल रात से अभी तक की रिकॉर्डिंग ले आया था और अब दोनों वही देख रहे थे। रात के 2:30 बजे का वक्त था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और वहां लगी स्ट्रीट लाइट की हल्की झिलमिलाती रोशनी में आरवी का अक्ष आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। आरवी बस चले ही जा रही थी। देखते देखते 1 किलोमीटर का दायरा खत्म हुआ पर आरवी कहीं ठहरी ही नहीं। ये देखकर शान ने गुस्से में बाइक पर एक किक मारा और जैसे ही लैपटॉप फेंकने को हुआ कार्तिक ने तुरंत लैपटॉप पीछे हटा लिया। सर, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, हमें दिशा मिल चुकी है तो हमें उसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए, हमें मैम तक पहुंचने का कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाएगा। शान ने गुस्से भरी निगाहों से उसको घूरा तो कार्तिक ने अपना सर झुका लिया। शान उसको घूरते हुए वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने अंदर बैठने के लिए दरवाजा खोला कार्तिक की आवाज उसके कानों में पड़ी, सर जिस डायरेक्शन में मैम गई है वहां आगे चलकर घना जंगल है, वहां रहने या ठहरने के लिए दूर दूर तक कोई घर नहीं है पर एक पुराना मंदिर जरूर है जहां अब बहुत ही कम लोग जाते हैं, शायद मैम वही कहीं हूँ। जहां शान गुस्से में अपना खून जला रहा था वहीं कार्तिक अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने में लगा था। बहुत सोचने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि आरवी वहां हो सकती है और उसने इस संभावना को शान के सामने व्यक्त कर दिया था। टू बी कंटिन्यूड।